सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत मंगोलिया के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत सी राजशेखर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरसेल उखना एक प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत की यात्रा पर हैं। ये यात्रा इसलिए विशेष है क्योंकि भारत और मंगोलिया के द्विपक्षीय संबंधों, जिसमें कि राजनयिक संबंध और रणनीतिक संबंध दोनों शामिल हैं, उनके राजनयिक संबंधों के 1955 के बाद से अब तक के 70 वर्ष और रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक संबंधों के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। और इस यात्रा के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही वो ये कि मंगोलिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जो साझा चर्चा रही, जिसमें बहुत से विषयों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए और जो कई पहल भारत और मंगोलिया के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चल रही हैं, उन्हें और मजबूत और तेज करने पर भी विचार विमर्श हुआ। और इस चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरसेल उखना की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंधों को लेकर प्रयास चल रहे हैं उनके बारे में विस्तार से बताया। तो आज हम कार्यक्रम में भारत और मंगोलिया के मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं पूर्व राजदूत सी राजशेखर, जो मंगोलिया में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका।
नमस्कार।
सबसे पहले एम्बेसडर राजशेखर, हम चर्चा की शुरुआत इस सवाल से ही करते हैं कि दोनों देशों के बीच जो एक आध्यात्मिक रिश्ता है, जो इतिहास की जड़ों में दिखाई देता है और आज भी वो शाश्वत है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया कि दोनों देश एक बौद्ध धर्म के शाश्वत सूत्र से बंधे हुए हैं और उन्होंने दोनों देशों को स्पिरिचुअल सिबलिंग के रूप में कहा।
भारत और मंगोलिया अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर आज हमने एक ज्वाइंट पोस्टल स्टैम्प जारी किया है, जो हमारी साझा विरासत, विविधता और गहरे सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक है।
तो ये कितना महत्वपूर्ण है दोनों देशों का संबंध, और जब ये आध्यात्मिक और साझा विरासत से लेकर राजनयिक और रणनीतिक यानी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक स्तर पर भी और मजबूत होता है, तो दोनों देशों की ये भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है।
दो देश के बीच में रिश्ते कैसे हैं, उसका सही अंदाज उनकी जनता के मन में क्या इमेज होता है, मंगोलिया के देशवासियों को हिंदुस्तान बोलने से उनके मन में कैसे महसूस होता है, क्या चित्र उनके मन में आता है, वो भारत को छगान देश बोलते हैं। छगान माने जैसा संस्कृत में बोलते हैं श्वेत, व्हाइट, तो हम उनके लिए व्हाइट कंट्री हैं, क्योंकि बुद्ध धर्म भारत में पैदा हुआ है, इसलिए बुद्धिज्म उनके लिए बहुत ही माननीय है। वो सब ये करना चाहते कि एक बार कम से कम जिंदगी में भारत में आके जो बौद्ध धर्म क्षेत्र जो पिलग्रिमेज है स्थल वाराणसी और बोधगया, ये देखना चाहते हैं और दलाई लामा जी से मिलना चाहते हैं। जो कई लोग मेरे जो मित्र हैं, जो मेरे सहोद्योगी हैं, वो जब भी हिंदुस्तान आते हैं तो मुझे ये रिक्वेस्ट करते हैं, ताजमहल से भी ज्यादा, कि हमें दलाई लामा जी से मिलने का एक मौका दिलाइए बोल के। तो उनके मन में ऐसे धार्मिक जो सेंटिमेंट है वो ही स्ट्रांग है।
बिल्कुल। अगर हम इनके जो विकास को लेकर रिश्ते मजबूत हो रहे हैं उस पहलू पर आएं, तो आज ही हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति उखना के बीच में जो साझा बातचीत हुई है और कई समझौते हुए हैं, उनके बारे में भी आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि जो ये समझौते हुए हैं, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, व्यापार हो, विकास हो, सहकारी या कोऑपरेटिव सेक्टर हो, ऐसे तमाम क्षेत्र और बहुत सारी पहल जो दोनों देशों के बीच चल रही हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है, और जो आज एमओयूज साइन हुए हैं दोनों देशों के बीच में, वो कौन से महत्वपूर्ण एमओयूज हैं और कितना दोनों देशों के बीच में संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने में उनका रोल होने वाला है।
मंगोलिया के राष्ट्रपति के विजिट 6 साल के बाद हो रहा है। ये उनका राष्ट्रपति खुरसेल उखना जी कल आए थे एक अपने डेलीगेशन के साथ, उप प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री और बहुत बड़ा डेलीगेशन को लेके आए हैं, और आज सुबह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर डेलीगेशन के साथ विस्तार में बात की है। हर तरह के रिश्ते, जैसे रणनीति का, व्यापार का और कल्चरल एक्सचेंजेस का और मिलिट्री कोऑपरेशन का, प्रोविंशियल कोऑपरेशन का से ऑल फैसेट्स ऑफ रिलेशंस पे उन्होंने चर्चा की है और उसके बाद कई एमओयू पे हस्ताक्षर हुई हैं। उनमें से एक है जो कल्चरल एक्सचेंजेस आने वाले चार साल हिंदुस्तान और मंगोलिया के बीच में कैसे विस्तार करें, और एक है हमारे लद्दाख ऑटोनोमस यूनियन टेरिटरी और वहां के अरहंगाई एक प्रोविंस उनको आईमाक बोलते हैं उनके बीच में कैसे बढ़ाए, और डिजिटाइजेशन कैसे में उसमें कोऑपरेशन करे, और माइनिंग और क्रिटिकल मिनरल्स में कैसे कोऑपरेशन बढ़ाएं, और कोऑपरेटिव्स को और कैसे बढ़ाएं। तो कई ऐसे एमओयूज पे हस्ताक्षर हुए हैं, और कल सुबह सीआईआई होस्टेड बिजनेस फोरम होगा, उसमें बिजनेस लीडर्स दोनों देश के रहेंगे और मंगोलिया के राष्ट्रपति जी उनको आमंत्रण करेंगे मंगोलिया में आके और इन्वेस्टमेंट करके इंफ्रास्ट्रक्चर में और अन्य क्षेत्रों में बिजनेस करने के लिए। अभी एक वहां भारत रिफाइनरी बना रहा है। भारत का हिंदुस्तान से बाहर सबसे बड़ा दुनिया में $2 बिलियन ऑयल रिफाइनरी वहां बन रहा है, 2 साल पहले वो शुरू हुआ है, और जब ये कंप्लीट होगा तो मंगोलिया के एनर्जी नीड्स में 70% का जो जरूरत है उनका वो मिल जाएगा, उससे उनको आत्मनिर्भर हो जाएंगे मंगोलियंस। तो ऐसे कई एमओयूस दस्तखत हुए हैं आज, और कल शाम को एक बड़ा भारत मंडपम में म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी होगा ब्यूटीफुल लैंड बोल के, और उनके राष्ट्रपति जी हमारे प्रधानमंत्री जी को भी निमंत्रण किया दोबारा आने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी 10 साल पहले 2015 मई में वहां गए थे।
अगर हम जो वैश्विक मुद्दे हैं उनको लेकर दोनों देशों की बात करें तो एक साझा और आपसी हमें विचार दोनों देशों का देखने को मिलता है। जैसे ग्लोबल साउथ को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज है। इसी तरह से जो इंडो पैसिफिक का मुद्दा है उसको लेकर भी एक साझा विचार दोनों देशों का हमें देखने को मिला।
हम दोनों देश फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने के लिए भी हम मिलकर काम करते हैं। भारत और मंगोलिया के संबंध केवल राजनयिक नहीं है, ये हमारे बीच आत्मीय और आध्यात्मिक बंधन है। हमारे संबंधों की असली गहराई और व्यापकता हमारे पीपल टू पीपल टाइज में दिखाई पड़ती है।
वैश्विक मुद्दों को लेकर भारत और मंगोलिया के जो आपसी साझा विचार हैं वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं?
ये वैश्विक मुद्दों पे भारत और मंगोलिया का सोच बिल्कुल मिलती जुलती है, आइडेंटिकल कह सकते हैं
जी।
तो हम बहुत टाइटली कोऑर्डिनेट करते हैं। तो शुरू से देखें तो 1955 में जब मंगोलिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू किया तो पहले सिर्फ सोवियत यूनियन और ईस्टर्न ब्लॉक जो ईस्टर्न यूरोप नो वार्सा पैक्ट कंट्रीज थे वही रिकॉग्नाइज किए थे, मगर उनसे बाहर भारत पहला देश था जो मंगोलिया को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दिया था। उन्होंने भी ऐसे ही जब बांग्लादेश विमोचन हुआ था तो भूटान सबसे पहला देश था और मंगोलिया दूसरा देश था बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करने का, तो दे आर रेसिप्रोकेटिंग। और जब भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप चाहता है तो मंगोलिया उसका समर्थन करता है हमेशा। और जो हम 10 साल पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस लाए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उसमें भी वो सदस्य शामिल हुए हैं। और जो भी ट्रेड हो, एनवायरमेंट हो, डिजामोमेंट हो, इन सभी मुद्दों पे ग्लोबल साउथ के एक हिस्सा मंगोलिया होते हुए सभी मुद्दों पे भारत से उनका सोच मिलता जुलता रहता है। बहुत ही साथ हम काम करते हैं, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं शोल्डर टू शोल्डर वी वर्क टुगेदर
जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खास घोषणा भी की कि जो मंगोलिया के नागरिक हैं उनके लिए निशुल्क ई वीजा की घोषणा की बात कही उन्होंने, और साथ ही दोनों देशों के बीच में जो पर्यटन और आपसी कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, उसको लेकर भी और ज्यादा बढ़ोतरी पर बात हुई है। और एक और यहां पर हम जिक्र करना चाहेंगे, लद्दाख और मंगोलिया के एक प्रांत के बीच में जो एक विशेष साझेदारी की बात है, तो इन सभी संबंधों से दोनों देशों के बीच में जो पर्यटन है और जो एक साझा संबंध है उनको मजबूत करने में कैसे मदद मिलेगी?
जो लद्दाख और अरहंगाई उसका नाम है, अरहंगाई के बीच में ट्विनिंग सिस्टर प्रोविंस रिलेशंस शुरू किया है, और पिछले साल से वो डायरेक्ट फ्लाइट्स भी हैं 6 महीने, क्योंकि सर्दी वहां बहुत ज्यादा है, सर्दी के सीजन में -50 डिग्री तक भी जा सकता है। तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक डायरेक्ट फ्लाइट्स चल रहे हैं हिंदुस्तान और मंगोलिया के बीच में। और ई वीजा कई दिन से भारत ने घोषणा की है, मगर प्रधानमंत्री जी की आज खास तौर पर घोषणा है कि ई वीजा से पहले भी उनको फ्री देते थे, हम ग्रेटिस वीजा देते थे, मगर ई वीजा के बाद भी अब दोबारा उनको निशुल्क वीजा से उनको आमंत्रण कर रहे हैं, ताकि वो मंगोलियंस यहाँ भारत आए, फर्स्ट हैंड उनको एक्सपीरियंस करे हिंदुस्तान, और आने से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ता है और कई एवेन्यूज खुलते हैं बिजनेस और इन्वेस्टमेंट रिलेशंस बढ़ने के लिए। तो इसलिए बहुत अच्छा ये निर्णय है, इनिशिएटिव है। मंगोलिया बहुत ही सुंदर देश है, जैसा हमारा कश्मीर है, लद्दाख है, तो हमारे लोग भी वहां उनको वो आमंत्रण करते हैं, वहां फिल्म शूटिंग करने के लिए वो आमंत्रण किया है बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को। तो ये पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस जो है ना, ये भी विस्तार और गहरा करने के लिए दोनों सरकार सोच रहे हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी और साथ ही स्किल और इनोवेशन को लेकर भी जो आपसी साझेदारी है उसको और मजबूत करने को लेकर बात हुई है, तो जो इस तरह के पहलू हैं इसमें आपसी साझेदारी दोनों के देशों के बीच अगर बढ़ती है तो ये कितना फायदेमंद होगा दोनों देशों के लिए?
हम सदियों से दोस्त हैं, तो इसलिए हर मुद्दे पे हम फायदा नुकसान नहीं सोचते हैं। हम कई डिकेड से उनके स्टूडेंट्स को हिंदुस्तान में पढ़ा रहे हैं स्कॉलरशिप्स देके, और उनके आईटेक स्कीम में, इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम में, उनको जिस क्षेत्र में उनको ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपर्ट ट्रेनिंग, वो हम दिला रहे हैं, जैसा आईटी में हो, एग्रीकल्चर में हो। और एग्रीकल्चर में उनका जैसा मैंने समझाया, 6 महीने ही हाँ मौसम अच्छा रहता है, बाकी बहुत सर्दी बहुत ज्यादा होता है, इनमें से 4 महीने ही वो जो एग्रीकल्चर हो सकता है। इसलिए भारत कई साल पहले वहां सीड बैंक दिया है, जो अर्ली मैच्योरिंग और कोल्ड रेसिस्टेंट वेराइटीज का, जो आलू हो और गेहूं हो, ये वहां पे जर्मप्लाज्म का बैंक किया है। तो हमारा रिश्ता बहुत ही लंबा और गुडविल बेस्ड है, सद्भाव से है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां करने के लिए बहुत मौका है, मगर उनका आबादी बहुत कम है, 30 लाख, 3 मिलियन का ही आबादी है, इसलिए टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है वहां पे। इंटरनेशनल टूरिज्म डेवलपमेंट में जॉइंट प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, और ऊल है ना, जो ऊन, वो उसमें बहुत हो सकता है, क्रिटिकल मिनरल्स में हो सकता है, और कॉपर और ऑयल सेक्टर में कोऑपरेशन हो सकता है। कल जो बिजनेस फोरम होगा कल सुबह, उनके राष्ट्रपति जी हुरेल सुख उकना जी इन क्षेत्रों पे हिंदुस्तान के बिजनेस इंडस्ट्री लीडर्स कैप्टन्स को आमंत्रण करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मंगोलिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की भी योजना शुरू करने की बात कही है, और जो डिफेंस सेक्टर है, रक्षा क्षेत्र है, उसमें भी आपसी साझेदारी को और मजबूत करने पर दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है, वो कितना जरूरी है?
कई साल से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जो नोमैडिक एलिफेंट
हाँ,
तो कई कई क्षेत्रों में, क्योंकि जो सर्दी में कैसा होता है, हाई एल्टीट्यूड में कैसा होता है, उनके लिए हमारे डिफरेंट टेरेन में कैसा होता है, ये आपस में कई साल से हम कर रहे हैं। ये और विस्तार और मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज भी हम कर रहे हैं, और अन्य देशों के साथ भी ट्राइलैटरल क्वाड्रन एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उनको विस्तार कर रहे हैं, उससे सरकारी तौर से बहुत ही सुदृढ़ हो रहे हैं हमारे रिश्ते।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर सी राजशेखर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने भारत और मंगोलिया के जो मजबूत होते द्विपक्षीय संबंध हैं उस पर विस्तार से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सैम मेनो।
अभी आप सुन रहे थे भारत मंगोलिया के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत सी राजशेखर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@gmail.com, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में